प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरंभ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
तुम ना थे इस जीवन में, जीवन मेरा कैसा होता, निर्बिन नदिया बिन फूल बगिया, जीवन मेरा ऐसा होता तुम ना आते। इस संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया, इस संसार के माया मोह में तृप्ति मिली ना आनंद पाया, तुमको पाके सब कुछ पाया, तुम ना मिलते तो क्या होता, तुम ना आते। कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी, कितनी बार अंधेरा छाया मेरे इस जीवन में सूझी, तुमने आके ज्योति दिखाई, तुम नाते तो क्या होता।
प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको हमारा हार्दिक नमस्कार। हमें आशा है आप प्रभु की दया से कुशल हैं और आज के सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम बाइबल अध्ययन की रूपरेखा अर्थात मार्गदर्शिका के विषय में, पथदर्शिका के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और हमने आपको 7 ऐसी बातें बताई जिनके आधार पर हमको पवित्र बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। उसमें से एक है ध्यान चिंतन। पिछले कार्यक्रम में हमने ध्यान चिंतन के ऊपर विचार किया और हमने देखा कि इथोपिया वासी खोजा जो अपने रथ में बैठा हुआ परमेश्वर के वचन पर ध्यान चिंतन कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी सहायता की, अपने दास फिलिप्पुस को वहां भेजा और फिलिप्पुस ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और सहायता के द्वारा उसको उस वचन के विषय में समझाया जिसे वो पढ़ रहा था। वो खोजा पढ़ रहा था यशाया नबी की पुस्तक के 53वें अध्याय को। इस 53वें अध्याय में क्या लिखा है, आइए मित्र हम इसको देखें। आप हमारे साथ अपनी पवित्र बाइबल से देखिए यशाया नबी की पुस्तक, उसका 53वां अध्याय 1-12 पद। यहाँ इस प्रकार से वर्णन है, हमारे संदेश का किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने कोमल अंकुर के समान और सूखी भूमि से निकली जड़ के समान उगा। उसमें ना रूप था ना सौंदर्य कि हम उसे देखते, ना ही उसका स्वरूप ऐसा था कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था और पीड़ा से उसकी जान पहचान थी। वह ऐसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुख फेर लेते हैं और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारी पीड़ाओं को आप सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, फिर भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण बेधा गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से प्रत्येक ने अपना अपना मार्ग लिया, परंतु यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया और उसे दुख दिया गया, फिर भी उसने अपना मुंह ना खोला। जैसे मेमना वध होने के समय तथा भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के समान शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस पीढ़ी के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीव लोक में से काट डाला गया, क्योंकि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र दुष्ट मनुष्यों के साथ ठहराई गई, फिर भी मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली थी, फिर भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको पीड़ित किया। यदि वह अपने आप को दोष बलि करके चढ़ाए तो वह अपना वंश देखेगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की भली इच्छा उसके हाथ से पूरी हो जाएगी। अपनी मनोव्यथा के परिणाम स्वरूप वह उसे देखेगा और संतुष्ट होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा, क्योंकि वह उनके अधर्म का बोझ आप उठा लेगा। इसलिए मैं उसे महान लोगों के साथ भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट को बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, फिर भी उसने बहुतों के पाप का बोझ स्वयं उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती की। मित्रवर, क्या कभी आपने उस मेमने पर ध्यान किया है जो वध करने के लिए ले जाया गया? ये मेमना कौन था? मित्र, वो स्वर्ग से आया और हमारे साथ समरूपता स्वीकार कर ली, वो हमारे समान बन गया। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए और सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया, और परमेश्वर ने हमारे सारे अपराध उसी पर लाद दिए। क्या आप कभी इन बातों पर ध्यान चिंतन करते हैं? उस इथोपियावासी ने किया, उसने इन बातों पर ध्यान दिया, उसने इन पर चिंतन किया, उसने इस बात पर चिंतन किया कि ये परमेश्वर का मेमना कौन है, ये किसके विषय में कहा गया है। बहुधा ये प्रश्न किया जाता है कि उसके पश्चात उस खोजे ने क्या किया। जब उसने इन बातों पर ध्यान दिया, उसने ये विचार किया कि ये मेमना कौन है, ये वध किया जाने वाला मेमना कौन है, तो परमेश्वर ने उसकी सहायता की और उसको बता दिया कि ये परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, जिसने उसके पापों के लिए अपना प्राण दिया है। वो उसका प्रायश्चित है, वो उसका उसके पापों के छुटकारे का मूल्य है। मित्रवर, उस इथोपियावासी खोजे ने अनंत जीवन को प्राप्त किया, आनंद को प्राप्त किया। अब बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि उसके पश्चात उस खोजे ने क्या किया। परंपरा बताती है कि वह अपने घर वापस गया और उस इथोपिया में उसने कॉप्टिक कलीसिया की स्थापना की, COPTIC, कॉप्टिक कलीसिया। उसने इस कलीसिया की स्थापना की। फिर भी इससे रुचिकर बात यह है कि वह आनंद मनाता हुआ अपने घर वापस गया। हमें यह स्मरण रखना है कि वह परमेश्वर के वचन पर ध्यान कर रहा था और इसलिए जब वो वापस गया तो आनंद मनाता हुआ अपने घर वापस गया। मित्रवर, यदि आप भी इसी प्रकार परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपके जीवन में भी ये आनंद निश्चय ही आ सकता है। ध्यान चिंतन के पश्चात हमारा पांचवा विषय है पवित्र शास्त्र के विषय लिखे गए अन्य लोगों के विचारों को भी पढ़िए। अन्य लोगों ने जो पवित्र शास्त्र के विषय लिखा है उसे भी पढ़िए। ये बाइबल की पांचवी, बाइबल अध्ययन की पांचवी रूपरेखा है। मुझे और आपको अच्छी बाइबल टीका पुस्तकों को भी देखना चाहिए। दूसरे लोगों ने क्या कुछ कहा है उसे पढ़ने से आपको बहुत लाभ होगा। आपको बाइबल टीका के अतिरिक्त शब्दानुकर्माणिका अर्थात कंकॉर्डेंस की भी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त आपके पास एक अच्छा बाइबल शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी भी होना चाहिए ताकि उसके द्वारा आप उचित शब्द को जान सकें, उचित व्यक्ति को, उचित स्थान को, उचित परिस्थिति को पहचान सकें। ये सब बातें आपके बाइबल अध्ययन में आपकी सहायक होंगी। प्रत्येक प्रचारक और बाइबल शिक्षक के पास कुछ विशेष पुस्तकों का सेट होता है जिसके द्वारा वे अध्ययन करते हैं। उसे वास्तव में उसकी आवश्यकता होती है, उसको आवश्यकता होती है उन समस्त पुस्तकों की जिसके द्वारा वो अपने बाइबल अध्ययन को अपने लिए और दूसरों के लिए अधिक उपयोगी बना सकता है। आपको अन्य लेखकों की पुस्तकों को पढ़ने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक सेमिनरी के प्रोफेसर ने कहा कि आपको हर एक के चरागाह में चरना चाहिए किंतु दूध अपना ही देना चाहिए। बात स्पष्ट है कि आपको दूसरे बाइबल विद्वानों और टीकाकारों को अवश्य पढ़ना चाहिए किंतु आप उसे अपने विचार के अनुसार प्रयोग करें और व्यक्त करें। आपको ऐसा करने का पूर्ण अधिकार है। मुख्य बात यह है कि हमें दूसरे बाइबल विद्वानों के परिश्रम और अध्ययन का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। तब छठा चरण है बाइबल अध्ययन का, बाइबल का व्यवहारिक रूप में पालन करें। बाइबल का व्यवहारिक रूप में पालन करें। पवित्र बाइबल विश्व की मात्र एक ऐसी पुस्तक है जो अपने पाठक से मांग करती है और इसलिए अधिकांश लोग इसे पढ़ना नहीं चाहते। ऐसे लोगों में कलीसिया के सदस्यों की संख्या अधिक है। ये तो एक दर्पण है, इसमें हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। कुछ लोग अपने चेहरे को देखकर साफ करते हैं, कुछ लोग दर्पण को हटा देते हैं और कुछ लोग दर्पण को देखना ही नहीं चाहते। तो इस प्रकार के लोग कलीसिया में पाए जाते हैं जो पवित्र बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते, उस पर उसको अपने व्यावहारिक जीवन में उतारना भी नहीं चाहते, क्योंकि बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो अपने पाठक से मांग करती है। पवित्र बाइबल को समझने तथा उसका अध्ययन करने के लिए आज्ञा पालन नितांत आवश्यक है। प्रभु के दास अब्राहम इसका उदाहरण है। परमेश्वर उनके सामने प्रकट हुआ और उनसे कहा कि वह कश्तियों के उर नगर से निकल आए। उसके पश्चात परमेश्वर ने कनान अर्थात प्रतिज्ञा के देश में उन्हें अपना दर्शन दिया और वहीं ठहरने को कहा, किंतु वह मिस्र देश को भाग गए। वो अकाल और सूखे से डर गए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और उस समय परमेश्वर ने अपने प्रिय अब्राहम से कोई बात नहीं की। दूसरे शब्दों में उन्हें कोई संदेश नहीं दिया और जब तक प्रभु के दास अब्राहम प्रतिज्ञा के देश वापस नहीं लौटाए, परमेश्वर ने उनके सामने किसी प्रकार का संदेश नहीं रखा, कोई सत्य प्रकट नहीं किया, वो स्वयं भी उनके सामने प्रकट नहीं हुए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु के दास अब्राहम के जीवन में आज्ञाकारिता की कमी आ गई। उन्होंने परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता के साथ पालन नहीं किया। जब तक प्रभु के दास अब्राहम ने उस वचन का पालन नहीं किया जो परमेश्वर ने उन्हें पहले दिया था, परमेश्वर ने उन्हें अग्रिम सत्य बताने को स्वयं को प्रकट नहीं किया। परमेश्वर उनके समक्ष अगला सत्य बताने को प्रकट नहीं हुए। ऐसा हमारे साथ भी होता है। जब हम परमेश्वर के वचन का, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब परमेश्वर हमारे सामने कोई नया सत्य उजागर करते हैं। अतः यहां तक कि सुसमाचार जो हमारे प्राणों के उद्धार के लिए ठहरा दिया गया है, वो भी आज्ञा पालन के एक विशेष उद्देश्य से हमको दिया गया है। प्रेरित पौलुस ने सुसमाचार की आज्ञाकारिता पर विशेष बल देते हुए रोम की कलीसिया को लिखा कि जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के लिए सब गैर यहूदियों में विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करें। इस वचन को आप रोमियों की पत्री के प्रथम अध्याय के 5 पद में देख सकते हैं। और इसी प्रकार से वह आगे लिखते हैं, जिसे हम 16 अध्याय के 26 पद में देखते हैं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, परंतु अब प्रकट हुआ है और अनंत परमेश्वर के आज्ञा अनुसार नबियों के शास्त्रों द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं, कि वे विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं। मित्रवर, विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं, ये अंतिम बात है जो प्रेरित पौलुस रोमियों की पत्री में बताते हैं। और इस प्रकार वह हमारे समक्ष ये स्पष्ट करते हैं कि सुसमाचार वास्तव में क्या है। सुसमाचार का संबंध विश्वास द्वारा मसीह का आज्ञाकारी बनना है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, विश्वास से आज्ञाकारी बन जाएं। यह हमारे पूर्वज आदम और हव्वा ने भूल की। हव्वा ने न केवल शैतान की, जो परमेश्वर का शत्रु है, बात सुनी, वरन उसे परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन भी किया। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आज्ञाकारिता द्वारा हम अपने विश्वास को व्यक्त करते हैं। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। और हमको इस बात को समझना है कि यदि हम आज्ञाकारी नहीं हैं तो परमेश्वर हमारे सामने अपना कोई सत्य प्रकट करने नहीं जा रहा है। हमें बाइबल अध्ययन से यदि कोई लाभ उठाना है तो ये आवश्यक है कि हम परमेश्वर के वचन का पालन करें, परमेश्वर के आज्ञाकारी बनें। और इसलिए भी आज्ञाकारिता आवश्यक है क्योंकि संसार में एक विशाल जनसमूह ऐसा है जो मसीहत को मेरे और आपके जीवन के आधार पर मापता है। हाँ मित्र, इस बात को आप समझिए, एक बहुत बड़ा विशाल जनसमूह है जो मसीहत को मेरे और आपके जीवन के आधार पर, हमारे आचरण के आधार पर, हमारे व्यवहार के आधार पर मापता है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने मसीह लोगों के आचरण को, उनके व्यवहार को मसीहत का मापदंड बनाया है। श्रोता, सुसमाचार की सुरक्षा में सबसे बड़ा कदम यह है कि हम सुसमाचार के योग्य जीवन व्यतीत करें। और इस प्रकार आप प्रमाणित कर सकते हैं कि पवित्र बाइबल परमेश्वर का वचन है। फिलिप्पियों की मंडली से प्रेरित पौलुस ने कहा, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य ठहरे। फिलिप्पियों की पत्री का 1 अध्याय 27 पद। श्रोता, एक बार 4 सुसमाचार सेवक पवित्र बाइबल के अनेक अनुवादों की योग्यताओं के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे। उनकी बातचीत का मुद्दा अनुवाद थे। और एक प्रचारक किंग जेम्स वर्जन की प्रशंसा उसकी भाषा की सरलता और सुंदरता के कारण कर रहा था। दूसरा प्रचारक अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन की प्रशंसा उसके यथाशब्द होने और इब्रानी तथा यूनानी भाषा की समीपता के कारण कर रहा था। और तीसरा प्रशंसा कर रहा था मॉडर्न ट्रांसलेशन के, आधुनिक अनुवाद की, और उसका आधार था उसकी शब्दों की भरपूरी। तब चौथा प्रचारक शांत बैठा हुआ था। जब उन्होंने उससे कहा कि वो अपना विचार भी प्रस्तुत करे, तो उसने कहा कि मुझे अपनी माँ का अनुवाद सबसे अधिक पसंद है। उसने इसका अनुवाद जीवन में किया। उसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा और उसका अनुवाद अपने जीवन में किया, और ये अनुवाद सबसे उत्तम अनुवाद है जो सबसे अधिक प्रभावशाली है, क्योंकि ये व्यवहारिक है और परमेश्वर पवित्र बाइबल के साथ ऐसा ही व्यवहार चाहता है। हम प्रेरित पौलुस के उस वचन को स्मरण करते हैं जो उन्होंने कुरिन्थुस की मंडली से कहे, दूसरा कुरिन्थियों के 3:2-3 जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारा पत्र तो तुम ही हो जो हमारे हृदय पर लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते तथा पढ़ते हैं, तथा ये प्रकट करते हो कि मसीह का पत्र तुम हो, जिनकी हमने देखभाल की और जो ना स्याही से ना पत्थर की पटियाओं पर परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से हृदय पटल पर लिखा गया है। श्रोता, मुझे ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि मसीहत अन्य लोगों की अपेक्षा कलीसिया के सदस्यों के द्वारा अधिक चोट खा रही है। आज मसीह यीशु बाहर की अपेक्षा मसीहों के घर के दरवाजे पर अधिक घायल किया जा रहा है। कुछ विरोध करने वालों ने विरोध में इस प्रकार से लिखा, चर्च नो जीसस यस, अर्थात कलीसिया नहीं यीशु मसीह हां। मित्रवत, इसका कारण क्या है? इसका कारण कलीसिया के अनेक सदस्यों का जीवन है जो आज की युवा पीढ़ी को कलीसिया से दूर जाने पर बाध्य कर रहा है। वे मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, उसे चाहते हैं, किंतु चर्च से कलीसिया से घृणा करते हैं। कारण है व्यवहारिक जीवन, मसीही आचरण, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। इंग्लैंड देश में किसी ने एक वकील से प्रश्न किया कि आप मसीही क्यों नहीं बने, आप मसीही क्यों नहीं बने? उसने उत्तर दिया, मैं स्वयं मसीही बन सकता था यदि मैं उन लोगों से ना मिला होता जो स्वयं को मसीही कहते थे। अब ये कैसा विचित्र उत्तर है। वो इसलिए मसीही नहीं बना क्योंकि उसकी भेंट उन लोगों से हो गई जो स्वयं को मसीही कहते थे। दूसरे शब्दों में, वो ऐसे जीवनों से टकरा गया जिनमें जिनके व्यवहारिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं था, जो बाइबल की शिक्षा के अनुसार परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को नहीं चलाते थे, वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे, और इसलिए उस वकील ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो मसीही नहीं बना। श्रोता, ये कितना गंभीर विषय है। हमें अपने जीवनों को जांचने की आवश्यकता है। क्या हमारे जीवन इस प्रकार से लोगों के लिए ठोकर का कारण तो नहीं बने हैं? या हमारे जीवन ऐसे हैं जिनको देखकर लोग मसीह यीशु में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? यदि आप मसीही हैं तो आपको इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। मित्रवर, परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी होना कितनी महत्वपूर्ण और आवश्यक बात है। तब बाइबल अध्ययन की रूपरेखा का अंतिम चरण है पवित्र बाइबल को दूसरों तक पहुंचाना। पवित्र बाइबल को दूसरों तक पहुंचाना। मित्रवर, पवित्र बाइबल को न केवल पढ़ना है, न केवल उसका अध्ययन करना है, न केवल बाइबल से संबंधित अन्य लेखकों के लेखों को पढ़ना है, वरन पवित्र बाइबल को दूसरों तक पहुंचाना है। यदि आप इसे दूसरों को नहीं बताएंगे तो आप इसके अध्ययन के संतृप्त बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपके अध्ययन की रुचि भी समाप्त हो सकती है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप बाइबल का ज्ञान कोश बनकर घूमें, जबकि अन्य लोग परमेश्वर के वचन के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, उनके पास तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा है, वो परमेश्वर के ज्ञान को नहीं जानते और आप ज्ञान कोश बनकर सड़क पर घूम रहे हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता है, और मैं सोचता हूं इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो जैसा कि कितनों की रीति है, वरन एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो और उस दिन को निकट आते देखकर और भी अधिक इन बातों को किया करो। ये वचन इब्रानियों की पत्री उसके 10:25 में मिलता है। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम उसके गवाह हों। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक के प्रथम अध्याय के आठवें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे गवाह हो। प्रभु ने ऐसा नहीं कहा कि हमको उसके वचन का ज्ञाता होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए और ज्ञानी बनकर बड़ी सेमिनरी की डिग्रियां व उपाधियां लेकर घर में बैठें या चलता फिरता बाइबल पुस्तकालय बनकर घूमें। उसने ऐसा भी नहीं कहा कि हमें परमेश्वर के वचन के सत्य को नोटबुक या डायरी में लिखकर दफना देना चाहिए। किसी व्यक्ति ने कहा है कि शिक्षा एक जीवन चक्र के समान है, जिसमें अध्यापक की नोटबुक विद्यार्थियों की नोटबुक में स्थानांतरित हो जाती है। अर्थात जो कुछ अध्यापक की नोटबुक में लिखा होता है वो विद्यार्थियों की नोटबुक में पहुंच जाता है। ये एक जीवन चक्र है। मित्रवर, ये बात पवित्र बाइबल के साथ भी लागू होती है। आज प्रभु ने हमें अपना गवाह होने के लिए बुलाया है, इसलिए हमें पवित्र बाइबल को दूसरों तक पहुंचाना, उसके विषय में बताना आवश्यक है। इस प्रकार ये सात प्राथमिक रूपरेखाएं हैं जो अत्यंत उपयोगी हैं, लाभकारी हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हाथों में लेते हैं तो आप इनका अनुसरण कर सकते हैं और अपने बाइबल अध्ययन को अपने लिए और दूसरों के लिए उपयोगी बना सकते हैं। एक बार पुनः इन सात बातों को दोहरा लें, प्रार्थना के साथ आरंभ करें, बाइबल को पढ़ें, पवित्र बाइबल का अध्ययन करें, पवित्र बाइबल पर ध्यान चिंतन करें, पवित्र बाइबल पर लिखी गई अन्य लेखकों की पुस्तकों को भी पढ़ें, पवित्र बाइबल का पालन करें और इसे दूसरों को बताएं। अब इसी आशा के साथ कि आप परमेश्वर के वचन के साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, हम आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। प्रभु आपको बाइबल अध्ययन के लिए तैयार करे और आपकी सहायता करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।